पृष्ठ संख्या 172। इकबाल 1874 ईस्वी में सियालकोट पंजाब में पैदा हुए थे। उनके पूर्वज काश्मीरी ब्राह्मण थे। इकबाल ने अपनी कविताओं में बड़े गर्व के साथ इसकी चर्चा की है। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने सियालकोट में प्राप्त की, फिर लाहौर चले गए। शिक्षा काल में वह अपने शिक्षालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में गिने जाते थे। दर्शन शास्त्र पृष्ठ संख्या 173 में यमे की उपाधि प्राप्त करने वह विशेष शिक्षा के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने बैरिस्ट्री भी पास की और जर्मनी से दर्शन शास्त्र के डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री भी प्राप्त की। यूरोप की यात्रा उनके जीवन की क्रांतिकारी परिवर्तनों का द्योतक है। उसने राजनीति और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका दृष्टिकोण एकदम बदल दिया। वहाँ से पलट कर वह लाहौर में बैरिस्ट्री करने लगे। कुछ समय के लिए एक कॉलेज में प्राध्यापक भी हो गए। थोड़ा बहुत पंजाब की राजनीति में भी भाग लेने लगे। 1931 ईस्वी में मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सभा में सम्मिलित होने लंदन गए। उनका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा करता था। 1936 ईस्वी में दशा बिगड़ती गई और अप्रैल 1938 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इकबाल के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव नहीं हैं, लेकिन एक विचारशील प्राणी होने के कारण अंदर ही अंदर उनमें घोर संघर्ष और परिवर्तन होता रहा था और वह संसार की सभी घटनाओं से प्रभावित होते रहे थे। उनका बालपन एक ऐसे पिता के छत्र छाया में बीता जो धर्म को बड़ा महत्व देते थे और फारसी की धार्मिक पुस्तकें इकबाल से पढ़ा कर सुनते और उसके रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे। इकबाल को ऐसे गुरु भी मिलते गए जिन्होंने उन पर गहरा प्रभाव डाला। वह मुसलमानों के मध्यम वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उसी की दृष्टि से जीवन की समस्याओं को देखते थे। भारत के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं और महान परिवर्तन हो रहे थे। मुसलमानों में एक प्रकार की जागृति पैदा हो चुकी थी जो उनके हृदय को कई ओर खींच रही थी। भारतवर्ष के बाहर मुसलमान देशों पर तबाही के बादल छाए हुए थे और लगभग सभी देश यूरोप के पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। यूरोप की सभ्यता एशिया की सभ्यता का विनाश कर रही थी और ऐसा जान पड़ता था कि मनुष्य के अंदर नैतिक गुणों के प्राप्त करने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। इकबाल इन सब बातों को समझते थे और जब उन्हें यूरोप में जाकर रहने और वहाँ के शासक वर्ग के विचार से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो यह बात उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखी कि यूरोप किस प्रकार सारे एशिया का रक्त चूस लेना चाहता है और अपनी सभ्यता फैलाने के बहाने उनकी आत्मशक्ति नष्ट कर देना आवश्यक समझता है, जिसमें कि उसे पिछड़े हुए देशों पर अपना अधिकार रखने में सुविधा हो। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की जो भावना बढ़ रही थी, प्रारंभ में इकबाल उस पर मुग्ध थे, पर यूरोप जाकर वह ऐसे विचारों के संपर्क में आए और राष्ट्रों के आपस के झगड़े देख कर वह राष्ट्रीयता से ऐसे खिन्न हो गए कि उन्होंने संकीर्ण देशभक्ति और राष्ट्रीयता को मानव जाति की एकता और विकास के लिए बहुत हानिकारक बताया। इसके बहुत से कारण थे, परंतु उन्होंने जिस वातावरण में इसे पूरी शक्ति से प्रस्तुत किया, उसने उनके विरुद्ध अन्य प्रकार के भ्रम पैदा कर दिए। शनै शनै वह प्रतिक्रियावादी मुसलमानों के नेता समझे जाने लगे, क्योंकि उनके विचारों से यह प्रकट होता था पृष्ठ संख्या 174 कि वह मुसलमानों को किसी न किसी प्रकार से भारत की दूसरी जातियों से अलग रखना और उनका संबंध बाहर के मुसलमानों से जुड़ना चाहते हैं। इकबाल ने इन विचारों को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया था और ऐसा जान पड़ता था कि वह किसी के विरुद्ध नहीं है। वह संसार की पिछड़ी हुई जातियों और विशेषकर मुसलमानों को हर प्रकार के अत्याचारों से बचाना चाहते हैं। इसलिए यह कहना कठिन हो जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनका दृष्टिकोण क्या था। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी उन आंदोलनों का साथ नहीं दिया जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे। यद्यपि उन्होंने मानव जाति की आत्म स्वतंत्रता विकास के प्रति बड़े उदार और उत्तम विचार प्रकट किए हैं। यदि इकबाल की रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक रूप में किया जाए तो ज्ञात होगा कि वह उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे जिन्हें सैयद और हाल ही के सुधारवादी आंदोलन ने जन्म दिया था। उनकी कविता में एक लहर ऐसी भी थी जो अकबर इलाहाबादी की याद दिलाती थी। उर्दू के अन्य कवियों की भांति उन्होंने भी आरंभ में गजलें लिखी थीं और अपनी कविताएं दाग दहलवी को दिखाई थीं, परंतु थोड़ा ही समय बीतने के बाद उन्होंने अपना मार्ग आप बना लिया और 1899 ईस्वी में अपनी पहली महत्वपूर्ण कविता हिमालय लिखी। इसके पश्चात प्रकृति के सौंदर्य, हिंदू मुस्लिम एकता और जीवन के आंतरिक संघर्ष पर बड़ी रोचक रचनाएं की। इनमें एक विचारशील प्राणी का कवि बन जाते हैं। इकबाल की महत्ता यह है कि वह पूरब और पश्चिम के दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, इतिहास, विज्ञान और राजनीतिक स्थिति प्रत्येक विषय से पूर्णतया परिचित थे। उनके समझने के लिए केवल इस्लामी विचारों से भली भांति विज्ञ होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि दूसरे सभी महान धर्मों, विचारों और आधुनिक विज्ञानों का जानना भी अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इस्लामी दार्शनिकों के अतिरिक्त प्लेटो, नीत्से, वर्गशा और आइंस्टाइन से भली भांति परिचित नहीं है, वह इकबाल की कविता को नहीं समझ सकेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि इकबाल ने केवल प्रसिद्ध दार्शनिकों के विचारों को काव्य के रूप में लिख दिया, बल्कि कहीं कहीं उनसे मतभेद भी प्रकट किया है, उनकी आलोचना की है और उनके उन्हीं विचारों को स्वीकार किया है जो उनके दृष्टिकोण को दृढ़ बनाते थे। उनका दृष्टिकोण क्या था, संक्षिप्त में यह बताना कठिन है, परंतु परिचय के लिए यह कह सकते हैं कि वह संसार में एक ऐसा अनुशासन और शासन चाहते थे जिसका आधार इस्लामी सिद्धांतों पर हो, जिसमें एकता हो और मानव जाति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। मनुष्य केवल इस दुनिया ही पर नहीं, चांद, सूरज और तारों पर भी अधिकार प्राप्त कर ले, उसकी अंतरात्मा पवित्र हो और विश्व की किसी भौतिक शक्ति के सामने वह अपना मस्तक न झुकाए। मनुष्य को यह अधिकार हो कि वह संसार में जैसा जीवन बिताना चाहता है उसी के अनुकूल अपना संगठन कर ले। परंतु पृष्ठ संख्या 175 उसे कभी ईश्वर की इच्छाओं के प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। उनका विचार था कि मनुष्य की आत्मशक्ति असीमित है और यदि वह उससे काम ले और आत्मसंयम पर चलकर उसे विकसित होने का अवसर दे तो वह ईश्वर के रचनात्मक कार्य में सहायक हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य से बड़ी कोई वस्तु नहीं पैदा की और सृष्टि की रचना भी उसी के हित में की है। इस आत्मशक्ति पर उन्होंने इतना जोर दिया है कि कभी-कभी वह केवल एक आध्यात्मिक कल्पना मालूम होने लगती है और यह समझ में नहीं आता कि उसके विकास के साधन क्या हैं। यही बात उनको यथार्थवादियों से हटकर आदर्शवादियों के निकट कर देती है और ऐसा जान पड़ता है कि वह यह सारे परिवर्तन वास्तविक भौतिक जीवन में नहीं बल्कि केवल कल्पनात्मक जगत में चाहते थे। इकबाल सूफियों के इस विचार का घोर विरोध करते थे कि मनुष्य को अपने अहम को नष्ट कर देना चाहिए जिससे कि वह ईश्वर में मिल सके। इसके विपरीत इकबाल यह समझते थे कि ईश्वर मनुष्य को उसी समय अपने निकट आने देता है जब वह अपनी सारी शक्तियों को काम में लाए और उन्हें विकसित करके अपने अंदर वह गुण पैदा करे जो अपने पूर्ण रूप में ईश्वर में पाए जाते हैं। फिर भी इकबाल के यहाँ एक नए प्रकार का तसव्वुफ देख पड़ता है जिसको हम आधुनिक काल का आध्यात्मिक विचार कह सकते हैं। इकबाल ने जीवन के हर गंभीर विषय पर दृष्टि डाली है। बिरला ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर उन्होंने कविता ना लिखी हो। विशेषकर उन्होंने आत्मशक्ति, मानव ज्ञान, सर्वगुण संपन्न अलौकिक पुरुष, प्रकृति पर मनुष्य का आधिपत्य, व्यक्ति और धर्म एवं समाज से उनका संबंध, पूरब और पश्चिम के दर्शन शास्त्र इत्यादि पर फारसी और उर्दू में बहुत सी रचनाएं की हैं और अपने अंग्रेजी भाषणों में भी इन पर गूढ़ विचार प्रकट किए हैं। उर्दू में इकबाल के केवल चार संग्रह हैं, वागे दरा, बाले जिब्रील, जरवे कलेम और अरमुगाने हिजाज। फारसी में उनकी कई पुस्तकें हैं जो उर्दू संग्रहों से अधिक महत्व रखती हैं। उनकी भाषा सरल नहीं थी, परंतु वह जिस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं उनके लिए वही ठीक कही जा सकती है। सौंदर्य की दृष्टि से उनकी बहुत सी रचनाएं उर्दू, फारसी तो क्या संसार की किसी भाषा में अपना स्थान बना सकती हैं। इकबाल मनुष्य की शक्ति पर पूरा विश्वास रखते थे और उसके भविष्य के ऐसे गीत गाते थे कि उन्हें जो भी पढ़ेगा उन विचारों के संगीत और प्रवाह में बहने लगेगा। उनकी पूरी पूरी कविता यहाँ नहीं दी जा सकती। इधर उधर से कुछ शेर उदाहरण के लिए लिखे जाते हैं। कोई अब तक ना ये समझा कि इंशा कहाँ जाता है, आता है कहाँ से। दिल में कोई इस तरह की आरजू पैदा करूं, लौट जाए आसमां मेरे मिटाने के लिए। पृष्ठ संख्या 176। न पूछो मुझसे लज्जत खानुमा बर्बाद रहने की, नशे मन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। भला निभेगी तेरी हमसे क्यों कर एवाइज, कि हम तो रस्म मुहब्बत को आम करते हैं। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। औजे आदमे खाकी से अंजुम साह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क में इंतहा और भी है। 20वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे कवि पैदा हुए जो उर्दू साहित्य के इतिहास में जगह पाने योग्य हैं। उनमें कुछ का वर्णन किया जा चुका है और कुछ ऐसे हैं जिन पर विस्तार से लिखना इस पुस्तक में संभव नहीं है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उनकी रचनाएं अध्ययन करने योग्य नहीं हैं। शाह, अजीमाबादी, ज्वाला प्रसाद वर्क, नैवत राय, नज़र, महाराज बहादुर वर्क, जगत मोहन लाल रमा, अमरनाथ साहिर, रियाज खैरावादी, मौलाना शफ़ी, फ़ानी अजीज, साकिब, सायल, आरजू, सीमाब, असगर, गोंडवी, जरीफ, हसरत मोहानी, तिलोक चंद महरूम, जिगर मुरादाबादी, यगाना चंगेजी, असर लखनवी का देहांत हो चुका है। इनमें से कुछ अभी थोड़े दिन पहले तक जीवित थे, परंतु उनको विशेष कारणों से 1935 तक के कवियों में गिना जा सकता है। उनके यहाँ वर्तमान काल का नयापन तो है, लेकिन वह नवीन चेतना को क्रांति में सहायक होती है, अथवा परंपराओं के तोड़ने का वह साहस जो आधुनिकता को जन्म देता है, इनके यहाँ विरला ही पाया जाता है। आगे के अध्याय में उन कवियों का उल्लेख किया जाएगा जिन्होंने इस युग की व्याकुलता, उद्विग्नता, विचार, स्वप्न और आशा का चित्रण किया है। उपरोक्त कवियों में अधिकतर ऐसे हैं जो गजल और अन्य सभी प्रकार की कविताएं भी लिखते रहे हैं और जिन्होंने अपने युग की धाराओं को नवीनता की ओर मोड़ने में भाग लिया है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो परिपाटियों से बंधे हुए होने पर भी अपना व्यक्तित्व प्रकट कर सके हैं और इतिहास में अपना स्थान बना लेते हैं। पृष्ठ संख्या 177। सैयद अली मोहम्मद शाद, अजीमाबादी, बिहार के आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और कवियों में गिने जाते हैं। उनका जीवन काल 1846 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक है। उन्होंने गद्य तथा पद्य साहित्य को अनमोल कृतियाँ प्रदान की हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वह सफ़ीर विलग्रामी को अपनी कविताएं दिखाते थे, परंतु उन्होंने अपना काव्य गुरु उल्फत हुसैन फरियाद को माना है। शाद ने मशनवी, गजल, कसीदा, मरसिया तथा अन्य काव्य रूपों में रचनाएं की हैं, किंतु साहित्यिक दृष्टि से वह अपनी गजलों की सरलता, घुलावट और वास्तविकता के कारण प्रसिद्ध हुए। मरसिया लिखने में भी उन्होंने बहुत नाम किया। आलोचकों का यह विचार युक्त संगत है कि गजल के घटते हुए प्रभाव को संभालने में शाद अजीमाबादी का विशेष योगदान है। उन्होंने गजल को न सिर्फ संभाला बल्कि उसमें ऐसी रंगीनी और मिठास भर दी कि गजल पुनर्जीवित हो उठी। उनकी कई पुस्तकें उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो चुकी थीं, परंतु गजलों का संग्रह नगमय इल्हाम उनकी मृत्यु के बाद सामने आया। अब तो उनकी आत्मकथा और दूसरे कई संग्रह भी छप गए हैं। उनकी अनेक मान्यताओं से असहमति रखते हुए भी वर्तमान युग का महान कवि माना गया है। यह मत लगभग सभी आलोचकों और विद्वानों का है। उनकी गजल के कुछ शेर ये हैं। मैं और सैरे लाला वो गुलो हिजरे यार में, कैसी बहार आग लगा दूं बहार में। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये बज्मे मैं है या कोताह, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। खुद चल इस कूचे में चलना जो है, ऐ पाए तलब वहाँ कोई हाथ पकड़ कर नहीं ले जाने का। जब अहले होश करते हैं अफसाना आपका, हंसता है देख देख के दीवाना आपका। ज्वाला प्रसाद बर्क सीतापुर के रहने वाले थे, जजी तक पहुँच कर 1911 ईस्वी में शरीर त्याग दिए। गद्य और पद्य दोनों के लिखने में निपुण थे, सरल भाषा में भावनाएं प्रकट करना उन्हें खूब आता था। बहार के मौसम पर एक बड़ी रोचक मसनवी लिखी है, परंतु अधिकतर अपनी गजलों की वजह से प्रसिद्ध हैं।